நமோரியந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயரீயாழம் நமோ உபத்யாயாழம் நமோ லோயே சவ்வசாஹுடம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோகணி மங்களம் குந்த குந்தாத்யோ ஜெயன தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாண காரகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம் நமஸ்மே சாராய ஸ்வானுபூத்யா சகாசதே சித் சுபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தரச்சிதே வந்தித்து சர்வ சித்தே துவமச்சல் மனோவமம் கதிம் பத்தே வோக்ஷாமி சமே பாஹுள மிளமோசது கேவலி பணிதம். தச லக்ஷண மஹாபர்வ ஹே ஓர் ஆராதனா கா பர்வ கஹா ஜாதா ஹே. தச லக்ஷண சன்யம் கா பர்வ கஹா ஜாதா ஹே, அஷ்டானி கா பக்தி கா பர்வ கஹா ஜாதா ஹே, அஷ்டானி கா தேவோ கா பர்வ கஹா ஜாதா ஹே, தச லக்ஷண மனுஷ்யோ மே பி முக்கியதயா முனியோ கா பர்வ கஹா ஜாதா ஹே. க்யோங்கி இஸ்மே உத்கிருஷ்ட ஆராதனா கி பாத் ஹே. சத்ய தோ யே ஹே கி பலேஹி ஹம் இஸ் கால் மே ஹமாரா ஜனம் ஹுவா ஹே, ததாபி கிரந்தோ மே ஐசா ஆதா ஹே கி இஸ் கலி கால் மே ஹர் 500 வர்ஷ மே தர்ம படேகா ஓர் ஹர் 500 வர்ஷ மே கட்டேகா. கலி கால் மே 500 வர்ஷ மே படேகா ஓர் 500 வர்ஷ மே கட்டேகா. அபி ஜோ வர்த்தமான் கே 500 வர்ஷ சல் ரஹே ஹே யே படனே வாலே சல் ரஹே ஹே பூரே கே பூரே. அனந்த ஜன்மோ கா புண்ய ஃபட்டா ஹே தவ் ஜீவ் மனுஷ்ய பர்யாய மே ஜன்ம லேதா ஹே. உத்தம் சோச் கா பர்வ ஹே ஆஜ். தர்ம தச நஹி ஹோதே உஸ்கே லக்ஷண தச ஹே. லக்ஷண வி தச நஹி ஹோதே. சத்ய தோ யே ஹே கி விகார தச ஹே தோ தச விகாரோ கா அபாவ ஹோனே கே காரண ஏக பீத ராக பர்ணதி கே தச நாம ஹே. வஹி க்ஷமா ஹே, வஹி மார்தவ ஹே, வஹி ஆர்ஜவ ஹே. வோ முனி பகவந்த் கி பீத ராக பாவ கே சாத் ஜோ பர்ணதி மே உன்கி சுபாவ கி மரியாதா ஹோதி ஹே து முனி பகவந்த கே வோ சுபாவ கிஸ் ஜாதி கா ஹோதா ஹே யே பதானே கே லியே வோ தச தரஹ கே வ்யவஹார தர்ம கஹே ஜாதே ஹே. கல் தா சத்ய ஓர் ஆஜ ஹே சோச். இஸே சோச் அகேலி லோப கே அபாவ கோ நஹி கஹதி பல்கி சாரோ கசாயோ கே அபாவ கோ உத்தம சோச் கஹதே ஹே. லோப மானே பர் வஸ்து மே சே சுக் கி ஆசா, பர் வஸ்து மே சுக் புத்தி வோ ஜ்ஞானியோ கே நிகல் ஜாதி ஹே. ஓர் ஜப் பர் மே சே சுக் புத்தி ஹி நிகல் கயி तो धीरे धीरे अंदर में जितनी रमणता होती है बाहर से पर द्रव्य का भी परिहार होने लगता है स्वयमेव ऑटोमेटिक. तन पर धागा नहीं और प्रसन्नता चक्रवर्ती से अधिक बढ़कर होती है मुनिराज की. ऐसे मुनि भगवंत उत्तम उत्तम सोच धर्म के धनी होते हैं। दयानंद राय जी की आपने पूजन भी की होगी, उसमें जगत के अज्ञानी जीव देह को शुचि करने को शुचिता मानते हैं, नहाने को शुचिता मानते हैं, बाहर की पवित्रता को शुचिता मानते हैं। ज्ञानी जीव तो कसाय को असुचि मानते हैं और स्वभाव को शुचि मानते हैं। इसलिए स्वभाव के आश्रय से जो वीतरागता उनको उत्पन्न होती है वो शुचिता कहलाती है। दरअसल दस लक्षण पर्व हमारा क्या कहें औपचारिकता में निकल जाता है, हम स्वभाव की आराधना नहीं कर पाते, या तो हमें सुनने का व्यसन रहता है या हमें समझाने का व्यसन रहता है। आराधना जो करना चाहिए स्वभाव की 10 दिन वो नहीं हो पाती है। सत्य तो ये है, ये 10 धर्म ये पर्व आराधना का पर्व है। इसके पीछे एक कथा भी मिलती है, वो मैं आपको बताऊंगा फिर अपना विषय शुरू करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये भी काल पंचम चल रहा है, छठे काल के अंत में प्रलय आती है। आर्यखंड के अंदर मूल ग्रंथों में है बात ये, उस समय भी कुछ मंद कसाई धार्मिक 72 कपल्स 72 स्त्री पुरुषों के जोड़ों को व्यंतर देव दया करके उठाकर बिजयार्थ पर्वत की गुफाओं पर रख देते हैं और 49 दिन बाद जब वो प्रलय शांत हो जाती है उस समय वो पुनः उनको आर्यखंड में स्थापित करते हैं। तो उन देवों से वो लोग पूछते हैं, स्त्री पुरुषों के जोड़े सब खत्म हो गए, हम क्यों बच गए? बोले पूर्व जन्म में तुमने जिन शासन की आराधना करी थी, पूर्व जन्म में तुमने जिन शासन की आराधना की थी, यद्यपि छठे काल में कोई मुनिराज नहीं होते, कोई सम्यक दृष्टि नहीं होते, तथापि वो मंद कसाई जीव होते हैं, इसलिए हमें आपको बचाने का भाव आया। बस वो 72 के 72 जोड़े पहले ही दिन हमारे पेट का क्या होगा ये चिंता छोड़कर धर्म की आराधना प्रारंभ करते हैं, और वो पहला दिन 10 लक्षण का पहला दिन कहलाता है, वो जो जिससे 10 लक्षण प्रारंभ होता है। आप कहोगे वो तो अनादि निधन है, कि वो अनादि निधन भी है और ये घटना भी जुड़ी है इसके साथ। पर्व जो वर्ष में 3 बार आते हैं 10 लक्षण, अन्य जो 2 हैं वो तो अनादि निधन है और ये भी अनादि निधन है, पर ये घटना भी इसमें जुड़ी है। सत्य तो ये है कि जगत में धर्म ही सुखकर है, धर्म ही शांति प्रदाता है। अभी गुरुदेव श्री का ये 157 और अभी 156 कलश चल रहा था, अद्भुत कलश है, निर्जरा अधिकार का है, बल्कि सच में ये लगातार 155 156 157 और 158 और 160 तक 6 कलश हैं, और इनमें सप्त भयों के अभाव की बात की है। एक एक कलश ऐसा है क्योंकि निर्जरा अधिकार है, ज्ञानी की परिणति का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि निर्जरा ही ज्ञानियों को होती है, अज्ञानी को तो निरंतर बंद होता है। हम सब डरे हुए हैं, संसार के जीव भयभीत हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तो सप्त भय आचार्यों ने गिनाए हैं। आपको नाम होगा याद कौन कौन सी होती हैं। सत्व भय तो असंख्यात होते हैं, तथापि सत्य भयों में उनको सारे भयों को शामिल कर दिया। इह लोक भय, परलोक भय, आजुलिया वेदना भय। इसकी चर्चा सुने तो व्यक्ति आकाश में उड़े, उसको ऐसा लगे कि अरे विश्व की मेरे अंदर कोई वेदना का काम क्या, क्योंकि मैं तो एक ज्ञान का वेदन करता हूं। आत्मा किसका बना है? ज्ञान से। तो जो वस्तु जिससे बनी है उसी का तो वेदन करेगी। अग्नि किससे बनी है? ऊष्णता से। तो अग्नि ऊष्णता से बनी है तो अग्नि किसका वेदन करेगी? ऊष्णता का। यद्यपि उसमें वेद्य वेदक भाव नहीं है, एग्जाम्पल है ये। जल किसका वेदन करता है? शीतलता का। सब हम तो राग का वेदन करते हैं, अज्ञानी राग का वेदन करता है। अज्ञानी राग का वेदन करता है ये भी व्यवहार है। इसकी चर्चा बहुत सुंदर गुरुदेव श्री की इस कलश टीका में लिखा है। ऐसा है एक एक कलश कि यहां से कसम खाकर उठे कि पूरे दिन इसी की आराधना करूंगा स्वभाव की, तो अंदर उसका रस बनता है। तो जो 155 नंबर का कलश था, भाई श्री यही विषय चला रहे हैं ना शायद, तो विस्तार से तो बोलेंगे, अभी तो जितना हम ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश करेंगे। तो दो भय लिए 155 में, यही लोक भय परलोक भय। ज्ञानी को इस लोक का डर नहीं होता, परलोक कोई स्वर्ग को कहते हैं ऐसा नहीं, परलोक कोई नरक को कहते हैं ऐसा नहीं, जहां देह छोड़कर जाए उसको परलोक कहते हैं। तो ना तो ज्ञानी को इस लोक की चिंता होती ना ज्ञानी को परलोक की चिंता होती, क्योंकि ज्ञानी का जो चैतन्य स्वभाव है वही उसका लोक है। उसे बाहर कहीं किसी की रंच मात्र तृष्णा होती नहीं। अरे तभी तो दिगंबर मुनिराज वन जंगलों में अकेले बैठे रहते हैं, उन्हें कोई डर नहीं सताता, उन्हें कोई चिंता नहीं सताती। हमको इस लोक की ज्यादा चिंता होती है बाहर की, कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। भगवान महावीर अंतिम शासन नायक वर्धमान प्रभु, उनकी सभा में राजा श्रीनिक महाराज विराजमान थे। उनको पूर्व में सप्तम नरक का बंध हो गया था, आत्मा की विराधना, मुनि भगवंतों की विराधना करने के कारण। बाद में प्रायश्चित हुआ तो 84,000 वर्ष के लिए भी नरक गए हैं। पर सभा में ऐसा बैठे थे तो इंद्र को वहां प्रश्न हुआ और भगवान से पूछा, प्रभु ये कौन महान व्यक्ति है कि जो अपने नरक गमन की सुनकर चिंतित नहीं हुआ और मैं तीर्थंकर बनूंगा ये सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ। तब भगवान की दिव्य ध्वनि में ये समाधान आया कि ये छायिक सम्यक दृष्टि राजा श्रेणिक महाराज हैं। छायिक सम्यक दृष्टि आगामी आने वाली 24 में 84,000 वर्ष बाद ये अयोध्या की धरा पर प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। ज्ञानी क्षेत्र से क्षेत्र के परिवर्तन को उससे धर्म अधर्म का निर्णय नहीं करती, इसलिए भले ही नरक में रहें तो भी उन्हें परलोक का भय नहीं, क्योंकि नरक में भी उनका जो लोक है वो तो चैतन्य ज्ञान लोक सदा विराजमान है या नहीं है। चिंता नहीं होती कि मेरा क्या होगा और इस जगत में मेरा क्या होगा, ये चिंता भी उनको नहीं रहती रंच मात्र। अरे पुस्तकें पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, ऐसा लगे इस जन्म में भी कदाचित उदयवश ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बाहर घोर प्रतिकूलताओं का ढेर हो, गजब का सीता जैसा, अंजना जैसा, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपने ज्ञान लोक का अवलोकन करते हैं। ये था 155 में, वो अभी नहीं, आज गुरुदेव श्री ने जो चलाया ये 156 नंबर का छंद, यही है ना, यही वाला, बड़ा सुंदर है, इसका थोड़ा अवलोकन करते हैं। पहले अपन संस्कृत में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे आप लोग, बोलो। नहीं, आप नहीं बोलते हो तो हम भी नहीं बोले। हाँ, इधर आता है ना, देखो माँ की भाषा सीखो, ये कैसा गजब होगा कि जिस दिन मेरी माँ मेरे से कोई बात करे और मैं किसी ट्रांसलेटर को बुलाऊं कि मेरी माँ मुझसे क्या कह रही है। ऐसी ही जिनवाणी माँ मेरे से बात करे सीधी, और फिर मैं किसी से पूछूं कि मेरी माँ क्या कह रही है, तो उस दिन मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय होगा। तो भले ही समझ में ना आए कोई चीज, फिर भी मूल ग्रंथों की भाषा जरूर पढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री यदि प्राकृत गाथा है तो उसको प्राकृत पढ़ते थे, और वो संस्कृत श्लोक है तो उसको संस्कृत को पढ़ते थे। देखो मिलकर पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। ऐसै केवहि वेदना यद चलम ज्ञानम स्वयं वेद्यते निर्भेदोदित वेद्य वेदक बला देकम सदा नाकुलै नैवान्यागत वेदने विभवेत तद्भी कुतो ज्ञानिनो निशंका तम स्वयं से सहजम ज्ञानम सदा बिंदति। बहुत अद्भुत है, गले में डालकर रखने जैसा है। यहां से गुरुदेव श्री की वाणी सुनकर जाए 156 नंबर कलश की, तो आकाश में उड़े, ये चैलेंज है जिनवाणी का, सारा भार उतर जाए, क्योंकि मुझे कोई वेदना ही नहीं है। अब आंखों से अश्रु धारा बह निकले, ऐसा लिखा है सदा सुखदास जी ने तो एक छंद में, ज्ञानी पर बाहर में आरे चल रहे हूं। क्या आरे? आज मैं आपको इसी 156 नंबर छंद में कम से कम 30-40 मुनिराज, जो कि अपने भगवती आराधना में शिवकोटि आचार्यों ने नाम गिनाए, रुई में लपेट कर आग लगा दी। किसमें? रुई में। तो बताओ वो मुनिराज किसका वेदन कर रहे थे उस समय? आनंद का, ज्ञान का, स्वरूप का वेदन कर रहे थे। आनंद का वेदन तो स्वरूप का होता है, आत्मा का। बहुत गजकुमार मुनिराज, सोनगढ़ में चित्र है, जलती सिगड़ी रख दी किसने, वो भी लो ससुर तो तिलक करता है, ये सिगड़ी रख रहे हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। पूर्व में राग था, विवाह नक्की हो गया, बाद में जगत की दशा देखकर वैराग्य हो गया। और सच्चा वैराग्य निराशाजनक नहीं होता, सच्चा वैराग्य प्रसन्नता भरा होता है। वन जंगल में घोर तप कर रहे हैं, ससुर वहां से निकला, गुस्से में आकर सर पर सिगड़ी बनाई मिट्टी की, उसमें कोयला भर दिए और आग लगा दी। खप्पड़ सर ऐसा जला था जैसे चीलड़ा जलता है, तवी पर बनाते हैं ना बहने। लेकिन वो मुनिराज छठे से सातवें गुण स्थान में आरोहण कर रहे थे। जब छठे गुण स्थान में हो तब विकल्प होता है, तब सप्तम में हो तो निर्विकल्प होते हैं। तो वो उस समय ये विचार कर रहे थे, मुनिराज का विचार भी देखो क्या गजब का है। अहो जंगल में कौन उपकारी आया है, लोग तो शादी के समय सेहरा पहनाते हैं, ये जंगल में मुक्ति का सेहरा पहनाने आया है, मुक्ति का। श्रीमद जी ने एक पत्र में ऐसा लिया है कि उपसर्ग ज्ञानी का मित्र है, उपसर्गों के संयोगों से देह को सिंग भी खाएगा। स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। संयोगों से देह को सिंह भी खाएगा। स्वरूप स्थिरता का अवसर मिल जाएगा। उपसर्ग ही मेरा मित्र होगा। अपूर्व अवसर कब वह होगा। ये तो मुनिराज की बात हुई, लेकिन यहाँ तो ज्ञानी भी वेदना के काल में है। क्या कहा? तो निर्जरा अधिकार है ना, निर्जरा हो रही है ज्ञानी को निरंतर। देखो ज्ञानी को गुण श्रेणी निर्जरा भी होती है और ज्ञानी को निरंतर निर्जरा भी होती है, दोनों है निरंतर। ज्ञानी जो शुद्धोपयोग में जाए तब तो निर्जरा होती है, लेकिन जिस समय ज्ञानी बाहर में पर्ण विकल्पात्मक नजर आता है, खाता पीता, उस समय भी उसको निर्जरा हो रही है। और जिस समय बाहर में देह की साता असाता जन्य स्थिति नजर आती है, बहुत विकट अर्थ किया समझना जरा, अपन स्वयं आचार्य के वचन पढ़ते हैं। देखो वो गुरुदेव श्री ने का प्रवचन आपने पढ़ाई है, बिल्कुल उससे आप एक एक शब्द देखेंगे गुरुदेव श्री के प्रवचन का, तो गजब है एकदम अद्भुत। सह स्वयं सततम सदा ज्ञानम बिंदति। सह इटले सु, स माने ज्ञानी, वह ज्ञानी स्वयं सततम, सततम माने निरंतर, सदा माने कालवाची, ज्ञानम बिंदन्ति माने ज्ञान का ही वेदन करते हैं। किसका वेदन करते हैं? मूल संस्कृत में छे सम्यक दृष्टि जीव पोतानी मेड़े निरंतर पणे त्रणे काले ज्ञान ने अर्थात जीवना शुद्ध स्वरूप ने अनुभवे छे आस्वादे छे। तो क्या जीव के दो स्वरूप होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध? यानी जीव तो सदा शुद्ध होता है। एक स्वच्छ तालाब, पूरनमासी का दिन एक स्वच्छ तालाब है और तालाब के अंदर चांद झलकता है, तो बताओ तालाब के अंदर झलकने वाला चांद चांद से बना है या पानी से बना है? उसी समय तो जिस समय ज्ञानी को बाहर में असाता जन्य, क्योंकि ये जो छंद है ये वेदना बहे के अभाव की बात है, आगे आ रही है इसमें चर्चा। तो जिस समय भीषण वेदना हो बाहर में, शरीर का परिणमन हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। एक मुनिराज ऐसे हुए जिनको 700 वर्ष के लिए कोढ़ रोग हो गया। कितने वर्ष के लिए? 700 वर्ष के लिए। तो स्वर्ग में इंद्र देवों से चर्चा कर रहे थे और देवों ने इंद्र महाराज से पूछा, प्रभु इस काल में देह से विरक्त, प्रतिकूलता के काल में भी स्वरूप की आराधना करने वाला कौन है? तो बोले सनत कुमार चक्रवर्ती। 700 वर्ष के लिए कोढ़ हुआ तो देव परीक्षा लेने आया नीचे, वैद्य का वेश बनाकर और झोले में औषधि लेकर। महाराज आपके देह में कोढ़ रोग शोभा नहीं देता, ये औषधि ले लीजिए। तो मुनिराज का ध्यान भंग होता है और उस वैद्य को कहते, हे वैद्यराज, आज मुझे प्रथम दिन मालूम हुआ है कि इस देह को कोढ़ हुआ है आपके कहने से। ज्ञानी की परिणति देखो, यद्यपि उदाहरण आदर्श है मुनिराजों का है, वो मुनिराज ज्ञानी और साता साता जन्य वेदना का अनुभव करते हैं या अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं। अंत अंत में गुरुदेव श्री ने यह भी कहा था कि ये सम्यक दर्शन प्रधान कथन छे, यद्यपि जितना राग शेष है उस राग का दुख रूप वेदन भी ज्ञानी करते हैं, तथापि दृष्टि के विषय में वो गौण है। वो है कितने काल का, है कितने काल का। यदि रत्न कीच में गिर जाए और एक बहुत बड़ा आदमी हो, करोड़ों का रत्न हो, तो उस रत्न को उठाएगा या नहीं, बताओ? उठाएगा। तो रत्न को उठा देने से वो हरिजन कहलाएगा क्या? नहीं। अच्छी चीजें उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कीच है धुल जाएगी। इसलिए राग होगा, राग का ज्ञान करते हैं, लेकिन राग का अकेला ज्ञान नहीं करते ज्ञानी, राग का दुख रूप ज्ञान करते हैं। क्या बोला? दुख रूप, क्योंकि ये दुखदाई है, राग दुखदाई है, जहर है, ये बहुत अद्भुत है। ये पोतानी मेले निरंतर पड़े तृण काले, ज्ञान ने अर्थात जीवना शुद्ध स्वरूप ने अनुभवे छे आस्वादे छे। अब बैठ जाओ, करना क्या है? आराधना करो। हमारी तुम्हारे साथ समस्या क्या है? हम सब औपचारिक बनकर आते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं कि हम, आप समझ रहे हैं हम सुन रहे हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि हम सुना रहे हैं, जबकि अब दूसरा समय और कौन सा आएगा आत्म आराधना का? बस यहीं बैठकर स्वरूप का अनुभव करो। करो क्या? मैं स्वरूप ही तो हूं, मैं चैतन्य ही तो हूं। ये जो हाथ हिल रहे हैं ये मैं नहीं हूं, ये बोलने का राग आ रहा है ये मैं नहीं हूं, ये आपको सुनने का राग आ रहा है ये आप नहीं हो, इन सब से भिन्न मैं तो ज्ञान मात्र हूं। इसलिए ज्ञान मात्र ज्ञानी के अनुभव में आ जाता है, तभी तो निर्जरा चालू हुई, उसको निर्जरा अधिकार है ना। ये केवु छे ज्ञान, अब वो ज्ञान कैसा है? केवु छे ज्ञान, नींद आ रही है क्या आपको? सोना नहीं भैया, बहुत आनंद आनंद लेना सीखो, ऐसा ऐसा गौरव आए अंदर से जागृत। भगवान के समवसरों में देखो आप, कहीं समवसरों का चित्र देखो तो श्रोता ऐसे बैठे रहते हैं, इस तरह से भगवान को चातकवत भगवान को देखते हैं, तो प्रमाद नहीं आता। प्रमाद क्यों आता है हमें? बहुत साइकोलॉजिकल बातें हैं छोटी छोटी, ये कि या तो हमें उसके फल का विश्वास नहीं है, कि नई जेनरेशन अभी धर्म में क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो हम जगत में करते हैं उसका फल तो साक्षात नजर आता है, लेकिन मैं आत्म तत्व हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं, मैं मेरा ज्ञान निर्णय ध्यान करूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा, ऐसे फल का विश्वास नहीं है। फल के विश्वास के अभाव में परिणति इधर नहीं झुकती। छह छह खंड के चक्रवर्ती दस लक्षण भरते इस वैभव में पढ़ो, आपको आश्चर्य लगेगा। छह छह खंड की चक्रवर्ती, छानवे छानवे हजार रानियां, गुरुदेव श्री स्वयं अपने मुख से प्रवचनों में फरमाते हैं, आज अष्टमी का दिन है मानो तो 32 चवर ढूंढती है चक्रवर्तियों पर, कितने? 32। तो वो चक्रवर्ती के ये चवर ढूंढने वाले जाग ना जाएं, विश्राम पर हैं, उससे पहले ही शमशान में जाके सामायिक करने लगते हैं। उनकी रानियां, छियानवे हजार रानियां एक दिन भरत जी की महल पर बैठकर सामायिक करती हैं, आकाश से रिद्धिधारी मुनिराज जाते हैं और ये देखते हैं ये आर्यकाओं का झुंड कहां से आ गया महल की छत पर। इसलिए वो अंदर तभी तो कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया, इतना वैराग्य था भरत जी की परिणति में। इसलिए ऐसा भविष्य के लिए कोई संकल्प मत करो कि घर जाकर अब इस गाथा का पाठ करेंगे, अभी आराधना करो, यहीं अभी तत्काल, इदम इदानीम, अभी तत्काल, और दूसरा कोई समय आने वाला नहीं है एकदम। अरे यहां से वापस गई, वापस पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे ये भी गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं। केवु ज्ञान छे, केवु ज्ञान छे, केवु छे ज्ञान, इसको खंडान्वय टीका कहते हैं। एक एक अन्वय करके, आप समझते हैं अन्वय किसको कहते हैं? जैसे हमने कहा वह घर जाता है तो संस्कृत में सीधा वाक्य नहीं होता, जाता है वह घर, तो संस्कृत में ऐसा है। अब इसको सीधा वाक्य बनाएंगे तो वो कहलाएगा अन्वय, वह घर जाता है। तो खंडान्वय टीकाकार थे कि एक एक का अन्वय करके एक एक वाक्य का अर्थ किया राजमल जी साहब ने। गुरुदेव श्री को अत्यंत प्रिय थी ये टीका, अत्यंत प्रिय है। मंदिर सुंदर बन गया ये तो ठीक है, पर ध्यान देना, मुझे कभी कभी बीच में बोलने का भाव आता है, टीका रह जाती है, कि 50 वर्ष तक ग्रंथों की होली जली, ऐसा काल आया था, एक मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने जलवाई, 50 वर्षों तक, लेकिन हमारे भाग्य से ये 5 परमागम बच गई, समझ लो आप। और यदि हम भी इसका आस्वाद न लें और गुरुदेव श्री जैसे अर्थ बताने वाले महापुरुष मिल गए, अब दूसरा चाहिए क्या, ये तो बताओ क्या चाहिए। केवु छे ज्ञान स्वभाव थीज उत्पन्न छे, किससे उत्पन्न छे, स्वभाव से माने पर से आया है ऐसा नहीं है, पुस्तक से आया है ऐसा नहीं है, ज्ञान इंद्रियों से आया है ऐसा नहीं है। यहां जो ज्ञान की चर्चा है ये सम्यक ज्ञान की चर्चा है। एक होता है त्रिकाल ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञानी की चर्चा चाहिए ना, निर्जरा अधिकार है, तो ज्ञानी को निर्जरा होती है, तो ज्ञानी को निर्जरा क्यों होती है, क्योंकि उसको सम्यक ज्ञान उत्पन्न हुआ है। सम्यक ज्ञान इटली सू, अधिक जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं, नहीं जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं, बल्कि जिसको जाना उसको भेद ज्ञान पूर्वक जाना। जैसे शराब है तो ये शराब है ये दुखदाई है, इसमें सुख नती, सुख मेरे अंदर है। श्रद्धा शुद्धोपयोग के काल में ज्ञान तो स्वरूप में डूब ही जाता है, लेकिन जिस समय ज्ञानी शुद्धोपयोग में नहीं है उस समय भी उनको निरंतर निर्जरा होती है, निरंतर निर्जरा होती है। इसलिए ये तक कहना पड़ा कि ज्ञानी को भोग निर्जरा हेतु है, लेकिन उसका अर्थ ही नहीं कि भोग से निर्जरा हो रही है, और भोग के काल में भी ज्ञानी को सम्यक ज्ञान बरत रहा है या नहीं, अरे बोलो बरत रहा है। प्रमाद नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, आनंद भोगो आनंद। चिद विलास एक ग्रंथ है गुरुदेव श्री के, कासलीवाल जी के ग्रंथों पे बड़े सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रवचन है, जीवन लगा दो एक बार। हम ये बताते हैं, देखो ये जीवन 25-50 वर्ष का महत्वपूर्ण है या अनंत काल का जीवन महत्वपूर्ण है, तो मेरा तो अनंत काल का जीवन। केवु छे ज्ञान, तो उसमें एक शब्द आया अब तो प्रसन्न हो, ये शब्द आया चिद विलास में, क्या आया है अब तो प्रसन्न हो, माने तेरा वैभव तुझे बता दिया और तू सुख का पिंड है, अब तो प्रसन्न हो। गुरुदेव श्री ने आज के प्रवचन में एक बात और ली थी, ये जो लौकिक सुख दुख है कल्पना छे, कल्पना है, ज्ञानी इसका वेदन नहीं करता। लौकिक सुख जिसे अपन कहते हैं वो भी लौकिक, वो सुख नहीं है, वो दुख है, और उसमें सुखाभास जैसा लगता है। आगे आएगा इसमें लाइन, उसको अपन पढ़ेंगे। स्वभाव तीज उत्पन्न छे केवो छे, ये केवो छे सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव निसंक, सात भय थी मुक्त छे, सप्त भय नहीं होते उसको, अनंत भय नहीं होते उसको, एक भी भय नहीं होता। याद रखना, जहां भय है वहां अधर्म है। मनोविज्ञान ये कहता है जगत के 99% लोग भय के कारण धर्म करते हैं। डरा हुआ है व्यक्ति, मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मैं भी यहां प्रयोग करूं ना, साइकोलॉजी एमए स्तर की साइकोलॉजी में लिखे ही सारी बातें, लेकिन अंतर इतना है कि वो जिन धर्म से विरुद्ध नहीं है लेकिन वो लौकिक चीज है। यदि अभी यहां ये धरती हिले ऐसा अभी है, किसी विश्व के यूरोप के किसी संत ने भविष्यवाणी की है कि 2 अक्टूबर को पूरी धरती, यही 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन, हाँ पूरी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन ये तो सब 2-2 बोतल पीने वाले लोग हैं, इनकी कोई भविष्यवाणी सही नहीं होती। मैं तो कहता हूं हो भी जाए मान लो तो बताओ क्या गुजरेगा। अभी जो आप हंस रहे हैं ना क्योंकि अपने को ऐसा, लेकिन मान लो सच में ऐसा हो जाए सच में, और डॉक्टर आपको बोल दे एक महीना शेष रहा है जीवन का, कैंसर हो गया है, भाई साहब उसको ऐसा लगता मैं मरा, प्रतिपल मैं मरा मैं मरा। मेरा एक सच्चा साथी था, अभी उसका नाम भी संजय था, अलीगढ़ में LIC का रीजनल ऑफिसर था, हमारी रिश्तेदारी में हमने उनसे एक दो पॉलिसी कराई थी। उसके बाद हम वो किस्त लेने नहीं आया, हमने फोन किया उसको, संजय नाम, तो उनकी मिसिज रो रो कर बिलक बिलक कर रोई, भैया तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं घर गया तो मालूम पड़ा ये लीवर कैंसर हो गया है, पूरा शरीर काला हो गया, पूरा रक्त गाढ़ा हो गया काला, जहां से देखो बस अंतिम समय चल रहा था, हाथ पकड़ के फूट फूट के रोए, फूट फूट के अब क्या करें, अंतिम समय क्या करें। हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मनुष्य बन गए हैं तो अनंत काल जिएंगे बाहर में, ये अनंत जन्मों का पुण्य फटकर आए तब तो मनुष्य बने, और अनंतानंत जन्मों का भाग फटकर आए तब मुमुक्षु घर में जन्म ली, साधारण बात नहीं है। करोड़ों करोड़ों लोक, करोड़ों लोक इस धर्म पर, वीतराग विज्ञान पर नौछावर कर दे कोई व्यक्ति तो भी न मिले, भली होनहार जागे तब जाकर विचार आता है कि मैं कौन तत्व हूं, वरना तो अनंतो भव भिखारी बनकर निकल गया, अनंतो वार देव बन गया, कुछ पल्ले नहीं लगा जीव के। सप्त भय नथी, सप्त भय नहीं, किसके बल से नहीं भय ज्ञानी को, कि उसे आत्मा के बल से, आत्मा का निरंतर वेदन चलता है, अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन चलता है ज्ञानी को। दो रूप से, एक अनुभव रूप थी, माने अनुभव से तो जब वो अनुभव करते हैं आत्मा का, और एक प्रतीति तो निरंतर आत्मा की चलती है, दो चीजें, एक प्रतीति एक शुद्ध उपयोग। क्या बोला? प्रतीति और शुद्ध उपयोग। तो ज्ञानी के निरंतर ये प्रतीति तो चलती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, स्वरूप में अहम हो गया ना, और जब निरंतर स्वरूप का जब जब अनुभव करे तब तो आनंद आता ही है। ई लोक वे परलोक वे, परलोक में क्या होगा, वेदना भय, मेरा क्या होगा, मैं तो मरा। वेदना के काल में वेदना का ज्ञान है या वेदना की वेदना है? अरे बोलो, वेदना के काल में वेदना का ज्ञान है या वेदना की वेदना है? सब वेदना का ज्ञान ये भी व्यवहार है। सच पूछा जाए तो ज्ञान में उस समय ज्ञान वेदना के जानने रूप परिणमित होता है, और अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मुझे वेदना थी, पर सच में ज्ञान ने वेदना तो की नहीं, वेदना का ज्ञान किया ये भी व्यवहार है। परमार्थता देखा जाए तो जिस ज्ञान में वेदना झलक रही है वो ज्ञान वेदना से बना है या ज्ञान से बना है? अच्छा, जो वेदना ज्ञान में झलक रही है वो ज्ञान में झलकने वाली वेदना, वो वेदना से बनी है या ज्ञान से बनी है? वो भी ज्ञान से बनी है। इसलिए ज्ञानी को निरंतर ज्ञान का वेदन चलता है। हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे, जिनवाणी विराजमान है। आप घर जाकर मान लो करोड़ों प्रतिकूलता आ जाए देह पर तो स्वभाव याद आता है या डॉक्टर याद आता है? देह की वेदना याद आती है या अपना ज्ञान स्वभाव याद आता है? क्योंकि हम प्रयोग नहीं करते, बहुत अद्भुत प्रयोग है ये। विश्व का कोई व्यक्ति जगत की किसी लौकिक वेदना को नहीं मिटा सकता, लेकिन एक कलश का प्रयोग घर में करे तो करोड़ों वेदना के बीच में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, करोड़ों वेदना के बीच में, ऐसा गजब का है। देखो साफ तो एक भय होता है, इसमें आगे है, छह कलश में सात भयों की चर्चा है। वेदना भय के बाद कौन सा भय आता है इसमें? मरण भय, मरना जाऊं, मर ना जाऊं, मरने के लिए अमर होने के लिए लाखों प्रयत्न करता है। इस देह के मरण की बात है, लेकिन ज्ञानी को तो अमर स्वभाव का आस्वाद कर लिया उसने, अमर स्वभाव का, इसलिए उसे लौकिक मरण की चिंता नहीं होती। अब हम अमर भय ना मरेंगे, बहुत अद्भुत भजन है। अमर हो गए, नहीं मरेंगे हम, अब अमर हो गए हैं। मरे अनंती बार बिन समझे, बिना समझे आत्मा को, बिना समझे मरे अनंती बार बिन समझे, क्यों कर दे है धरेंगे। अब हम अमर भय ना मरेंगे, अनरक्षा भय, मेरी वस्तुओं को कोई चुराना ले, चुराना ले। जिस व्यक्ति का जितना ऊंचा पुण्य होता है वह उस परिग्रह को उतना ही ज्यादा संभाल कर रखता है, ये नियम है, ये नियम है। राजा लोग कभी अलमारियों में ताला नहीं लगाते, क्योंकि उनकी ताली, उनका अलमारी रत्नों से बनी है, तो कहां क्या लगाएगा ताला, वो कैसे लगाएगा। और जिसके ज्यादा थोता पुण्य हो, घर में दो चार अंगूठी हो, तो लॉकर में लगने जाएगा पागल कहीं का। अरे मूर्ख है, तेरे पास है क्या जो चुरा लेगा तेरा कोई। अनरक्षा भय, उसको लगता है लेकिन मैं जो हूं, मैं तो ज्ञान स्वभाव हूं, जो मैं चीज हूं वो मुझे कोई लूट नहीं सकता, मेरा कौन लूटेगा, है किसी की ताकत कि जो मेरे स्वभाव को लूट ले। आकस्मिक भय, ये साइकोलॉजिकल, ये भय बहनों को बहुत होता है। जैसे बच्चा स्कूल से आ रहा हो और आने का टाइम पे नहीं आए, तो तुरंत बार बार छज्जे से झांके, देखे कहां गया बच्चा, कहां गया, अच्छा आज जरूर बस पलट गई, बस पलट गई होगी, तुरंत एक घंटा इंतजार करे, अब तो गई, रोना रखना शुरू। पति देव ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, अब क्या सुन धैर्य रखे, दो घंटा तो थी गया ऐसा। अब अस्पताल में फोन लगा रहे बार बार, कौन से अस्पताल में फोन लगा रहे हो, आप बीमार हो क्या, मालूम पड़ा तो बच्चा आ गया था घर में, उसने बताया नहीं, उसको गहरी नींद आ रही, कमरे में सो रहा था। आकस्मिक भय, उसको ऐसा भय होता, अचानक क्या होगा, स्वभाव में अचानक क्या होगा। अच्छा क्रमबद्ध पर्याय से तो निर्णय है कि हर परिणति हर काल में होनी निश्चित है, तो जब जो जो देखी भीत रागने, सो सो होसी बीरा रे, तो बताओ काय का डर है। अरे बोलो डर है क्या। मान लो अभी ये हॉल हिले और भूकंप आए, तो बताओ क्या होगा। सबका जवाब निकलना चाहिए कि यही स्थान हमारा निर्वाण क्षेत्र होगा, माने यहां बैठकर हम समाधि मरण करेंगे, हम भागेंगे नहीं उठकर, समाधि मरण करेंगे यहां। समाधि मरण माने अमर स्वभाव का वेतन। देखो समय तो हो गया, पूरा लाइन कर देते हैं, पता ही नहीं पड़ा। भय क्याति होए नथी हो तो कारण के अनाकुल ही, सर्वता भेद ज्ञानी विराजमान छे जे पुरुषो ते पुरुषो, माने कौन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, ते पुरुषो माने ज्ञानी पुरुष, स्वयं वेद्यति स्वयं एवो अनुभव करे छे, अकेलो बोले छे एम नथी। एक चाणक्य का सूत्र है, वो जितना आप पे लागू होता है उतना मुझ पर भी लागू होता है। चाणक्य ने दिगंबर दीक्षा ली है ऐसा ग्रंथों में आता है। वो ही कहते इस वर्तमान काल में केवलम न भोक्तुम क्षमा न मोक्तुम क्षमा केवलम वक्तुम क्षमा, संस्कृत में छे, व्यक्ति ना तो छोड़ने के लिए समर्थ है न भोगने के लिए समर्थ है, केवल कहने के लिए समर्थ है। इस बात को अनुभव करो घर जाकर, प्रतिकूलता के काल में आनंद से खिलखिलाना सीखो, आनंद से, क्योंकि वास्तव में ही सत्य है। यदि हमने भी प्रयोग नहीं किया तो कौन करेगा। गुरु मार्ग तो पूरा मिला है हमको, आधा काम हमारा गुरुदेव हमारा कर गए हैं, क्योंकि मार्ग पूरा बता गए, सामने रख गए हैं, अब केवल प्रयोग करना है, ढूंढना नहीं है, मार्ग मिला मिलाया है, केवल प्रयोग करना है। अनुभव करे छे यत अचलम ज्ञानम ईसा एका एव वेदना। क्या कह रहे हैं, जे कारण थी शाश्वत छे जे ज्ञान, एज एक जीव ने एक वेदना छे। शरीर नी वेदना नथी, ज्ञानी को ज्ञान की वेदना छे। ज्ञानी एक ज्ञान की वेदना करता है। निश्चय थी आने छोड़ी ने जे अन्य कर्म ना उदेती थई जे सुख रूप अथवा दुख रूप। ध्यान देना, ये जो इसमें सुख रूप लिखा है ये भी लौकिक शब्द है, ये भी सुख नथी दुख है। अभी समय नहीं है, बस ये लाइन पूरी नहीं करा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कर देते हैं। जीव ने छेज नहीं ज्ञान केवु छे, शाश्वत छे एक रूप छे। कर्म के उदय से जो शरीर में वेदना हुई वो ज्ञानी ने नथी। अच्छा, अज्ञानी को तो है। अरे बोलो, परमार्थता देखें तो अज्ञानी को भी वेदना के काल में वेदना का ज्ञान है। ज्ञान स्वभाव में वेदना घुस नहीं गई, लेकिन अज्ञानी ये मानता है कि मुझे वेदना थई गई, इसलिए उसका बंधन है। सा कारणे एक रूप छे, आगे इसमें फिर ये बताते हैं कि वो एक रूप ज्ञान स्वभाव का ही वेदन करते हैं। वेदाय छे एवु सामर्थ तेना कारणे, भावार्थ है आम छे कि जीवनो स्वरूप ज्ञान छे ते एक रूप छे, जे साता असाता कर्म ना उदय सुख रूप दुख रूप वेदना थाय छे ते जीवनो स्वरूप नथी। तेथे सम्यक दृष्टि जीव ने रोग उपजाव नो भय हो तो नथी। तो फिर हॉस्पिटल हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम दवा लेंगे या नहीं लेंगे, वो चीज अलग है। वो मेरा यदि मान लो कमजोरी है मुझ में, तो मैं कमजोरी के कारण जा रहा हूं, डॉक्टर सही नहीं कर रहा। अभी आप इसका पूरा विषय गुरुदेव का प्रवचन सुनो तो गुरुदेव श्री ने जबरदस्त समाधान किया है। इस श्लोक यही समाप्त करते हैं, पर हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी घर जाकर इसका प्रयोग करना, और किसी को घर नहीं जाना हो तो यहीं बैठकर प्रयोग करो।